मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। AFEIS के आज 14 सितंबर 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज 14 सितंबर है, हिंदी दिवस है। ये इत्तफाक ही है कि आज हिंदी दिवस है और साथ ही साथ डेली ऑडियो लेक्चर का मंडे भी है। मैं जानबूझ के मंडे शब्द का उपयोग कर रहा हूं, मैं सोमवार शब्द भी बोल सकता था। तो मुझे लगा कि एक अच्छा संयोग है, तो मुझे आज हिंदी माध्यम और जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होती है और इसको लेकर के जो एक मन में संदेह बना हुआ है, इस पर कुछ बातें करूं। तो मुख्य विषय के तहत मैं हिंदी माध्यम और सिविल सेवा के बारे में आप लोगों से कुछ बातें करूंगा, लेकिन आइए पहले एक दो जो दूसरी सामान्य सी घटनाएं हैं उन्हें देख लेते हैं। कोरोना सोमवार के हमारे लिस्ट में आ चुका है फाइनल तरीके से। आप देख रहे हैं कि संक्रमण की संख्या तो लगातार बढ़ती चली जा रही है, हम अब डेली 1 लाख को छूने वाले हैं और पूरी की पूरी दुनिया में आप सोच के देखिए कि अगर 2 लाख संक्रमित हो रहे हैं तो उसमें 50% का जो संक्रमण भारत में ही हो रहा है, ये एक चेतावनी देने वाली सूचना है। भारत में बहुत तेजी से फैल रहा है और फैलने के पीछे अब जो कारण बताया जा रहा है वो ये कि लोग इससे संबंधित जो अनुशासन है उनका पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा के घूम रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। और सच पूछे तो अगर आप बाजार में निकल जाइए तो आपको इसी तरह से आप तस्वीरें भी अखबारों में देखी होंगी और प्रत्यक्ष रूप से भी आपको दिखाई दे जाएगा कि उसी तरह से भीड़ भाड़ है, लोग मस्त हैं, मास्क लगा नहीं रहे हैं, कुछ लोग उसमें लगाए हुए हैं। तो कहा जा रहा है कि इसकी वजह से बहुत तेजी से संक्रमण फैल रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो स्वस्थ होने की दर है वो बढ़ती चली जा रही है और जो मृत्यु दर है वो घटती चली जा रही है। यानी कि ठीक है, नंबर ऑफ पेशेंट तो बढ़ रहे हैं लेकिन हमारा नियंत्रण भी उस पर बढ़ता चला जा रहा है। जो स्वस्थ होने की दर है वो 77.88 आ गया है और जो मृत्यु दर है गिर करके 1.65 हो गई है, तो ये एक अच्छी खबर है। फ्रेंड्स, न्यूज में आपने सुना कि आज से हमारा संसद का मानसून सत्र शुरू हो गया है, जो छोटा ही है लेकिन इसके दौरान काफी विधेयक लाए जाएंगे। और जैसा कि संविधान में ही है कि संसद के 2 अधिवेशनों के बीच में 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए सरकार की एक तरह से कह लीजिए बाध्यता ही थी, संवैधानिक दायित्व तो था कि वो संसद के सत्र की शुरुआत करे। तो ये छोटा सा ही सत्र है और जनरली मानसून सत्र छोटा ही होता है, तो इसकी शुरुआत हो रही है। आप देख रहे हैं कि इसमें पहले हम लोगों ने बात की थी कि जो प्रश्नकाल है उसमें काफी कटौती कर दी गई है और मैंने आप लोगों को बताया था कि खासकर लोकतांत्रिक दृष्टि से इस कटौती की आलोचना भी हो रही है और आपके पास इसकी आलोचनात्मक जानकारी होनी ही चाहिए, तो इस पर आप लोग अच्छी तैयारी कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, बेहतर होगा कि अब मैं सीधे सीधे आज के मुख्य विषय पर आऊं, हिंदी माध्यम और सिविल सेवा। जैसे ही सिविल सेवा परीक्षा के अंतिम परिणाम अभी घोषित हुए थे, मेरे पास मेल की भीड़ लग गई थी और मेल में प्रश्न पूछे जा रहे थे कि सर, हिंदी माध्यम वाले लगता है कि बहुत कम सेलेक्ट हुए हैं, सेलेक्ट ही नहीं हुए हैं, नहीं के बराबर हुए हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। और स्वाभाविक है कि देखिए, जब इस तरह के रिजल्ट आते हैं तो आपके मन में इस तरह के प्रश्न उठेंगे ही और कहीं ना कहीं मन में जो सिविल सर्विस तैयारी करने को लेकर के एक उत्साह है वो कम भी होता है। ये एक सामान्य मनोवैज्ञानिक स्थिति है, इसमें कोई दो राय नहीं, और आप लोगों ने जो इस बारे में प्रश्न पूछा उसका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन दोस्तों, इसका जवाब मैंने अभी तक इसलिए नहीं दिया कि मैं क्या जवाब देता। इस पर बाकायदे मेरा YouTube चैनल पर एक प्रोग्राम डला हुआ है, हिंदी माध्यम वाले क्या करें, कुछ इस तरह का उसका शीर्षक, आप चाहें तो उसे देख लें। और मैं बल्कि सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके मन में इसको लेकर के संदेह है तो डेफिनेटली आपको वो यूट्यूब का प्रोग्राम सुनना चाहिए, देखना चाहिए। दोस्तों, जब हम हिंदी माध्यम और सिविल सेवा की बात करते हैं, और इसमें हिंदी माध्यम में आप दूसरी भाषाओं को भी शामिल कर लीजिए, क्षेत्रीय भाषाएं या गैर अंग्रेजी भाषाएं कह लीजिए, उसको भी आप शामिल कर सकते हैं। जब हम इसकी बात करते हैं तो देखिए, इसके सीधे 2 पक्ष, हमारे दिमाग में चीजें बहुत स्पष्ट होनी चाहिए। इसके 2 पक्ष हैं, सीधे सीधे 2 पक्ष हैं। एक पक्ष UPSC का पक्ष है, संघ लोक सेवा आयोग का, कि उसने जो पूरा का पूरा इसका स्ट्रक्चर तैयार किया, जो ढांचा तैयार किया सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का, भर्ती का कह लीजिए, रिक्रूटमेंट का, उसमें हिंदी और दूसरी जो हमारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनके साथ भेदभाव करने की कितनी गुंजाइश है, क्या वो संभव है, और अगर है तो कितने प्रतिशत है, कि उसका कितना दुष्प्रभाव हिंदी माध्यम और दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं के विद्यार्थियों पर पड़ेगा, इसका एक पक्ष है। दूसरा पक्ष हम खुद हैं, वे लोग जो गैर अंग्रेजी भाषा के माध्यम से अपीयर हो रहे हैं, जिसमें हिंदी भी एक भाषा है। यानी कि हम अंग्रेजी मीडियम नहीं ले रहे हैं, उसकी जगह हम हिंदी ले रहे हैं, उड़िया ले रहे हैं, तमिल ले रहे हैं, असमी ले रहे हैं। इस तरह से हम किसी भी मीडियम से एग्जामिनेशन दे रहे हैं। मुझे लगता है दोस्तों कि इस पर बहुत ही तर्क संगत तरीके से सोचे जाने की जरूरत है। मैं तर्क संगत की बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब इस तरह के इश्यूज पर बात की जाती है तो देखिए, ये भाषा का इशू बन जाता है। सिविल सर्विस तो है ही है, लेकिन ये फिर भाषा का इशू बन जाता है। और जब भाषा का इशू बनता है तो भाषा हिंदी भाषा बनाम अंग्रेजी भाषा का इशू बन जाता है, और जब हिंदी बनाम अंग्रेजी भाषा का इशू बनता है तो फिर वर्ग का इशू बन जाता है। यानी कि गांव के गरीब या निम्न वर्ग के बच्चे प्लस अंग्रेजी का मतलब है उच्च वर्ग के बच्चे जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे स्कूलों में कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, उनका मामला बन जाता है। और धीरे धीरे कुछ समय के बाद ही फिर यह राष्ट्रीयता का मामला बन जाता है। ये भारत है और भारत की अपनी भाषा हिंदी है या अंग्रेजी होनी चाहिए या क्यों होनी चाहिए, कितने प्रतिशत लोग बोलते हैं। और सच पूछे तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें फिर इस पूरे के पूरे डिस्कशन में जो सिविल सर्विस और हिंदी माध्यम है और इसमें दूसरी भाषाएं भी आप शामिल कर लें, उसका इशू गायब हो जाता है। हम उनको बिंदुवार तरीके से फिर नहीं समझ पाते। मैं चाहूंगा कि आप लोग इसे समझने की कोशिश कीजिए क्योंकि आप लोगों का तो जीवन देखिए जुड़ा हुआ है, बिल्कुल जुड़ा हुआ है। मैं इसके बारे में कुछ तथ्य आपको बताना चाहूंगा, शायद आप मेरी बात पर विश्वास कर सकें। अब संघ लोक सेवा आयोग को उठा करके देखिए। नो डाउट कि जब पहले जब सी सेट लागू किया गया था तो उस समय जो आपके सी सेट के में जो क्वेश्चन पेपर होता था उसमें 8 से 10 क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज पर होते थे। वो बहुत भेदभावपूर्ण था। डेफिनेटली उसका उद्देश्य ही था कि अंग्रेजी वालों का पक्ष लेना और दूसरी भाषा वालों को बाहर कर देना, इसमें कोई दो राय नहीं। आपको मालूम है कि इसके खिलाफ आंदोलन हुआ, इसके खिलाफ लोग न्यायालय में गए और अंत में फिर वो जो क्वेश्चंस होते थे 8-10 उनको निकाल दिया गया, राइट। अब हम बराबरी पर आ गए और सी सेट को उसके बाद से क्वालिफाइंग भी बना दिया गया। कुछ समय के बाद उसको क्वालिफाइंग पेपर कर दिया गया। उस समय तो सी सेट के मार्क्स भी जुड़ते थे। वो भेदभावपूर्ण था। अगर अब हम यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो दो भेदभावपूर्ण रूप दिखाई देते हैं। नंबर 1, अनुवाद की स्थिति। जो अनुवाद किया जा रहा है वो बहुत ही बेकार अनुवाद है और हिंदी वालों को और दूसरी भाषा वालों को समझने में बहुत दिक्कत हो रही है और दिक्कत के बाद भी उन्हें नहीं समझा जा रहा है। इस पर मैंने बहुत से लेख लिखे हैं और मैं आगे भी लिखता रहूंगा। यूपीएससी को इस पर विचार करना चाहिए कि कम से कम वो अनुवाद तो ऐसा करे कि जो हिंदी वाले समझ लें। तो हो सकता है कि उसके दिमाग में भेदभावपूर्ण भावना हो, मुझे नहीं मालूम है। जो दूसरा है वो है जनरल इंग्लिश कंपलसरी जो आपको लेना है, और हालांकि ठीक है उसे क्वालिफाई ही करना है लेकिन जनरल इंग्लिश का है। और जनरल इंग्लिश का पेपर इतना सरल नहीं होता, वो देते हैं कि 10वीं के स्तर का होता है, लेकिन नहीं, वो 10वीं से भी अच्छे स्तर का होता है। तो वैसे स्टूडेंट जिनकी अंग्रेजी बहुत ही ज्यादा कमजोर है तो मेंस में आकर के रुक जाते हैं। मुझे लगता है कि अगर हम यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो केवल ये दो मुद्दे मुझे व्यक्तिगत तौर पर वो दिखाई देते हैं जिसके सामने आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगा सकते हैं। अदरवाइज यूपीएससी क्या कर सकेगी, भेदभाव करेगी। कुछ लोग कहते हैं कि कॉपी जांचने में भेदभाव होते हैं। दोस्तों कॉपी जांचने में आप बताइए कि जैसे आप उड़िया मीडियम से बैठ रहे हैं या आप कन्नड़ माध्यम से बैठे हुए हैं या हिंदी माध्यम से आपने अपने मेंस की कॉपी लिखी है, तो उसको क्या इंग्लिश मीडियम वाले प्रोफेसर जांचेंगे? कन्नड़ भाषा की कॉपी तो कन्नड़ भाषा जानने वाले प्रोफेसर ही जांचेंगे। और सामान्य तौर पर हम ये तो मानकर चल ही सकते हैं कि जो कन्नड़ भाषी प्रोफेसर होगा वो कम से कम कन्नड़ भाषा के प्रति तो विरोध का भाव नहीं रखेगा। अंग्रेजी के प्रति हो सकता है कि उसमें मोह का भाव हो, चलिए, लेकिन कन्नड़ भाषा का विरोधी तो नहीं होगा। तो क्या सच में ऐसा है कि जो दूसरी भाषाओं की जो कॉपियां होती है उसको भी अंग्रेजी वाले जांचते हैं? और अगर आपको लगता है कि जांचते हैं तो क्या ये संभव है? अब मैं आता हूं इंटरव्यू पर। दोस्तों एक इंटरव्यू के साथ ही मैं आपको एक और भी महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि पिछले साल जब आपके मार्कशीट्स आ गई थी स्टूडेंट की, तो उस मार्कशीट का मैंने एक विश्लेषण किया था और मुझे ये कहते हुए आप यूं कह लीजिए कि आप यूं प्रसन्नता हो रही है, खुशी हो रही है कि बहुत से मार्कशीट देखने के बाद मैंने उसमें ढूंढा था कि हिंदी मीडियम वालों को कितने कितने नंबर मिले हैं और मैंने पाया कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन पेपर नहीं था जिसमें हिंदी माध्यम वालों को बहुत अच्छे मार्क्स नहीं मिले हों, जिसमें जनरल स्टडीज के चारों पेपर, निबंध और इंटरव्यू, ऑप्शनल को मैं छोड़ रहा हूं। इन सभी के मार्क्स में हिंदी वालों के मार्क्स किसी भी मायने में जो टॉपर्स फर्स्ट 20 थे उनसे कम नहीं थे। फिर आपके दिमाग में आएगा फिर वो फर्स्ट 20 में क्यों नहीं आया। उसका कारण यह था कि ये सारे अच्छे मार्क्स किसी एक दो तक सीमित नहीं थे। किसी को जनरल स्टडीज के फर्स्ट पेपर में खूब अच्छे मार्क्स मिले, 120 मिले हिंदी मीडियम का, तो पता लगा बाकी में बहुत कम हो गए, तो कुल मिलाकर के वो कम हो जा रहा है। इंटरव्यू तक में हिंदी माध्यम में 200 से अबव मार्क्स मिले थे और यही इसी के आसपास लगभग इंग्लिश मीडियम वाले के थे। तो मुझे ये लगता है कि अगर कुछ लोगों को हरेक पेपर में अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं तो ये तो कहा जा सकता है कि संभावनाएं हैं, अदरवाइज उनको अच्छे मार्क्स नहीं मिले होते। तो दोस्तों, इसलिए मैंने शुरू में कहा कि ये जो समस्या है सच है, इस रूप में ये समस्या सच है कि जो प्रतिशत है वो बहुत कम है, बहुत ही दुखद और दयनीय है। अगर इस बार के YouTube और दूसरे माध्यमों से जो पता लगा है तो एक ने करीब कहा कि 12-14 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, दूसरे ने 40 लड़कों की लिस्ट स्टूडेंट्स की लिस्ट बताई है हिंदी मीडियम से। पता नहीं, क्योंकि UPSC तो अपने आंकड़े इस रूप में भाषा का क्या माध्यम रहा है अंत में वो नहीं बताता है, उसे बल्कि बताना चाहिए कि अंतिम जो सफलता मिली है किस किस माध्यम के कितने कितने स्टूडेंट्स को मिले कितने प्रतिशत, लेकिन वो नहीं बता रहा है कि पता नहीं क्यों नहीं बता रहा है। लेकिन हमें अपने लेवल पर भी इस पर कुछ न कुछ विचार करना होगा और पूरी गंभीरता से विचार करना होगा कि हम कहां चूक रहे हैं, हमसे कहां कमी हो रही है। दोस्तों, जहां तक किताबों का सवाल है, किताबें हर तरीके की अच्छी किताबें हिंदी माध्यम में अवेलेबल हैं। इसे आप प्लीज मेरी गर्वोक्ति न समझें, मेरा अभिमान और मेरा घमंड न समझें, बल्कि सच पूछिए तो मेरा एक सजेशन समझिए कि हम लोगों ने ऑनलाइन के माध्यम से जो चीजें आपको प्रोवाइड की हैं उन्हें आप किसी भी दूसरे माध्यम से कंपेयर करके देखें, सामने स्पष्ट हो चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। आप अंग्रेजी मीडियम से कर लीजिए, दूसरे माध्यमों से कर लीजिए, आपको हमारे जो लेक्चर्स हैं दूसरे किसी भी माध्यम के लेक्चर से कमजोर नहीं लगेंगे। यानी कि आपके पास किताबें हैं, आपके पास लेक्चर्स हैं, और क्या चाहिए अब ये बताइए। अब सिर्फ आप बचते हैं कि आप इनका इस्तेमाल कितने अच्छे से कर पाते हैं। मेरा जो अनुभव रहा है, एक बहुत बड़ी कमजोरी हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए, वो भाषा। उनकी भाषा बहुत कमजोर है, लिखने में भी कमजोर है, बोलने में भी कमजोर है। बोलने में कमजोर इस मायने में क्यों, मिक्सिंग भाषा बोलते हैं, जो हर विषय की जो अपनी भाषा है उसका वो इस्तेमाल नहीं करते हैं। और लिखने इस मायने में कि वर्तनी की बहुत सी गलतियां होती। मेरे पास जो मेल आते हैं उसमें से आपको ताज्जुब होगा कि जो हिंदी में के मेल हैं उसमें से केवल 10% मेल ऐसे होते हैं जो देवनागिरी में लिखे जाते हैं, बाकी रोमन लिपि में लिखे जाते हैं। MAI मैं, KAHAN कहना, CHATHITA का चाहता हूं कि। आप देवनागिरी में क्यों नहीं लिख रहे हैं, आप रोमन में क्यों लिख रहे हैं? फिर आपकी मात्राएं कैसे सुधरेंगी, आपको फास्ट राइटिंग की हैबिट कैसे पड़ेगी? और उसमें भी एक एक पेज का मेल लिख रहे हैं। आपने कभी कल्पना की कि एक पेज के आपके मेल को रोमन लिपि में हिंदी की तरह पढ़ने में कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? अगर आपने जो मीडियम लिया है, अगर हिंदी आपका मीडियम है, तो हिंदी मीडियम में लिखिए, तब जाकर के आपकी स्पीड बनेगी, भाषा पर पकड़ बनेगी और वर्तनी की गलतियां भी कम होंगी। और मेरे पास तो जो मेल आते हैं वो उन्हीं के आते हैं जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से जो छोटी छोटी कमियां हैं हमें अपनी कमियों की तरफ भी देखना होगा, उन्हें सुधारने की कोशिश करनी होगी। और फिर जो हम आज शिकायत कर रहे हैं, जब हम अपने लेवल पर अपने आप को बहुत मजबूत कर लेते हैं तो सामने वाले को भी फिर हमारी बात मानने के लिए बाध्य होना पड़ता है। तो मित्रों, दोनों पक्षों की बात मैंने आप सबके सामने रखी है। मैं चाहूंगा कि आप इन पर विचार करें और विचार करने के बाद जो बातें आपको सही मालूम पड़ती हैं उन पर काम भी करें। कम से कम हम व्यक्तिगत स्तर पर तो कर ही सकते हैं। ठीक है, UPSC का जो एरिया है उसके लिए दूसरे लोग बकायदे उसको लेकर के चिंतित हैं, उस पर बहस होती है, उस पर बात होती है, उनमें अगर कुछ ऐसा पाया जाता है तो वहां भी सुधार की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। तो फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले दोस्तों को धन्यवाद देता हूं और इन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं: अर्शदीप शर्मा, शिवांगी हरिद्वार उत्तराखंड से, प्रेम साहू, आफरीन यूसुफ, मोहित बोस, मथुरा उत्तर प्रदेश से, और रूपाली सिंह परिहार, आप सबका बहुत बहुत आभार। और फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब मैं यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।